This episode of VoiceOver Par Charcha is powered by VoicesBazaar.com, India's premium audio agency.
So welcome to another super episode of VoiceOver Par Charcha. In this super special episode, we have a dynamic, senior, legendary voice artist, a TEDx speaker, an actor seen in some of the web series like Family Man Season 1, Family Man Season 2, Special Ops Season 1.5, Farzi Mirzapur Season 2, and last but not the least, the narrator of Big Boss. So, to my viewers, to my subscribers, to my listeners, it's a great, great, great honor to have the one and only Mr. Vijay Vikram Singh on VoiceOver Par Charcha. So, sir, aapka bahut, bahut, bahut hardik swagat hai VoiceOver Par Charcha mein.
Bahut, bahut dhanyawad. Jaise main generally shuru karta hoon, waise bhi dopahar 2 baje Vijay Vikram Singh Harsh ke saath VoiceOver par charcha kar rahe hain.
My God, I can't believe it, sir. Thank you so much for coming on this show, sir. Aur sir, sabse pehle agar hum voicing ki baat karte hain, to mujhe lagta hai ki jo chapter hai voicing ka, agar hum apni life ko ek kitab ki tarah agar hum usko visualize kare, to voicing ka chapter bahut baad mein aata hai. Usme before that there is a lot, it's a big story, it's very inspiring. To sabse pehle hum us mode se sir shuru karna chahenge.
I'm glad कि आपने ये बात कही और I'm glad कि आपने काफी रिसर्च करी है और आपको पता है कि वॉइस ओवर का आगाज हमारी जिंदगी में बहुत बाद में हुआ. इनफैक्ट शुरुआती दिनों में जब आप सपने देख रहे होते हैं तो उन सपनों की लिस्ट में 1 से 10, 1 से 100, 1 से 500 के बीच की लिस्ट में भी वॉइस ओवर नहीं था, वो हमें पता ही नहीं था. मैं कानपुर में पला पड़ा हूँ और आई एम 80s and 90s child. I grew up in the 80s and 90s. 80 और 90 के दशक में जो करियर ऑप्शंस होते थे वो बहुत लिमिटेड होते थे क्योंकि हमारी जो हमारा जो एक्सपोजर था वो बहुत, उसका दायरा बहुत सीमित था. तो या तो आप इंजीनियर बनते थे या डॉक्टर बनते थे या MBA करते थे, बैंक में नौकरी कर लेते, और कुछ ही लोग होते थे जिनका एक शौक होता था, जिनका एक पैशन होता था फौज में जाने का, वो फौज में चले जाते थे.
Yes.
ये अच्छी एजुकेशन के बाद यही करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते थे. तो इस बात के बावजूद कि मैं स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे था, बेस्ट एक्टर, एलोक्यूशन में फर्स्ट प्राइज, डिबेट कॉम्पिटिशन, ये सब में बहुत पार्टिसिपेट किया है मैंने और बहुत बढ़ चढ़ कर हर तरह की करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है. क्रिएटिव साइड मेरा बहुत स्ट्रांग रहा शुरू से. मेरे जहन में कभी ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं क्रिएटिव फील्ड में जाऊंगा या मेरा इंक्लिनेशन उस तरफ है. हम अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से अपना करियर नहीं चुनते थे, हम करियर चुनते थे जो हमारे आसपास लोग चुन रहे होते थे, जो एक चलन चल रहा होता तो उसी हिसाब से हम करियर चुनते थे. तो इतना इंटरेस्ट होने के बावजूद भी ये ख्याल कभी नहीं आया कि शायद जो मेरा इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहीं इस तरफ है, आर्ट की तरफ है. चक्कर क्या था कि एक और बात ये थी कि आर्ट और आर्ट एज अ सब्जेक्ट उसको नीची दृष्टि से देखा जाता था. तो एक्सेप्टेंस के लिए हमने कभी ये सोचा भी नहीं कि हम आर्ट्स की तरफ हम अपना रुझान करें. जबकि ये भी एक फैक्ट है कि हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट मुझे बहुत अपील करता था, शायद इसलिए क्योंकि क्रिएटिव साइड जो थी मेरे अंदर की वो बहुत स्ट्रांग थी. और इतिहास जो है वो कहानियां, कल्चर, उस सब की बात करता है, तो उसमें बहुत रुचि थी मेरी. लेकिन कभी ये ख्याल नहीं आया कि करियर उस तरफ बनाया जाए. करियर हमने उसी तरफ बनाने की सोची जो जिस तरफ सब लोग बह रहे थे. और मेरे साथ ये था कि मैंने हमेशा अपने आप को एक फौजी अफसर के रूप में देखा. मैंने हमेशा ये महसूस किया कि मैं शायद फौज के लिए बना हुआ हूँ, तो मैं हमेशा फौजी बनना चाहता था, आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता था. और इसी हिसाब से मैंने पढ़ाई भी करी. ग्रेजुएशन मतलब इतना क्लैरिटी थी कि मुझे पता था कि फौज में जाना है तो बायो लें या मैथमेटिक्स लें, कोई बात नहीं है. मैंने 12th में बायोलॉजी ले ली, ग्रेजुएशन के लिए कॉमर्स कर लिया. इतना क्योंकि था कि फौज में जाना है तो चलो पढ़ाई तो कोई भी कर ले, जाना तो मुझे फौज में
अल्टीमेटली जाना. राइट.
जी, झटका सबसे बड़ा तब लगा जब पहली बार फौज के इंटरव्यू के लिए बुलावा आया। जब बुलावा आया तो मुझे लगा अब बस, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, अब मैं हो गया फौजी, हो गया, तैयारी करनी चाहिए मुझे IMA जाने की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी जाने की। और पहला SSB मैंने फेस किया। SSB में एक 5 दिन का प्रोसेस होता है वो पूरा इंटरव्यू का। 5वें दिन जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मुझे, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। वो पहली बार था 19-20 सालों में मेरे जीवन के, आई वॉज आई थिंक 20 एट दैट टाइम। तो उन 20 सालों में पहली बार था जब इतना बड़ा फेलियर मैंने देखा अपनी जिंदगी में, सपनों को टूटते हुए देखा। और मेरे अंदर वो शायद कैपेबिलिटी नहीं थी कि मैं उस फेलियर को हैंडल कर पाता। आई वॉज
एक्सेप्टेंस
मेंटली वीक, सो आई कुड नॉट, एज यू सेड, एक्सेप्ट दैट फेलियर, एंड इवेंचुअली आई कुड नॉट हैंडल इट। और इसीलिए आज मैं बहुत सारे कॉलेजेस और कॉर्पोरेट्स में जाकर टॉक्स देता हूँ, और मेरी टॉक्स, माई टॉक्स आर सेंटर्ड अराउंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फेलियर इन लाइफ। तो वो जो एक कमी थी मेरे अंदर, उसने मेरे अगले लाइफ के अगले 6 साल जहन्नुम बना दिया। मैं फेलियर नहीं हैंडल कर पाया, एक्सेप्ट कर पाया। मैं उसका सहारा ढूंढने लगा दूसरी चीजों में, और मुझे सहारा मिला शराब में, और मैं शराब पीने लगा बहुत ज्यादा। 20-21 साल की उम्र से लेकर 26 साल की उम्र तक मैंने अति कर दी शराब पी। उसका नतीजा ये हुआ कि 26 साल की उम्र में मेरे पैंक्रियास फट गए, और पैंक्रियास फटने के बाद जो बीमारी होती है उसको कहते हैं सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस विद रीनल फेलियर। तो 20 से 26 साल की जो उम्र थी उसमें सिर्फ शराब में डूबे रहे, और SSBs अटेम्प्ट करते रहे। तो उसके बाद 7 और SSB मैंने अटेम्प्ट करी। 7 और SSB में मैं गया, और 7 बार और फेल हुआ, रिजेक्ट हुआ। तो 8 बार फौज से मैं रिजेक्ट किया गया हूँ, और हर रिजेक्शन जो है वो मुझे थोड़ा और कमजोर कर देता था, थोड़ा और उस तरफ धकेल देता था। एक ही चीज अच्छी हुई इस पूरे 6 साल के दौर में कि वो प्रयास में जारी रखा मैंने, और दूसरा ये कि ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी एक्सप्लोर किए। शायद शराब ना पी रहा होता तो और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाता। जैसे कैट की तैयारी की मैंने
एमबीबीएस
MBA के लिए, और जिस साल मैंने दिया उसी साल पहली बार कैट ने अपने स्कोर्स देने शुरू किए थे, तो
परसेंटाइल एंड ऑल
92 परसेंटाइल आ गया। अब 92 परसेंटाइल ऐसे कोई बहुत ग्रेट परसेंटाइल नहीं है, बट वो आदमी जो सुबह शाम तक शराब पी रहा है उसके लिहाज से ठीक है। तो उस हिसाब से कॉलेज भी ठीक मिल गया हमें, BHU, FMS BHU में इंटरनेशनल बिजनेस मुझे मिल गया। तो इस फेज में एक ही चीज अच्छी हुई कि एजुकेशन जारी रही, स्टंटेड थी, 100% नहीं थी, ऑप्टिमम आपके टैलेंट के हिसाब से आप एफर्ट नहीं डाल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद वो जारी रही। MBA भी हो गया, MBA के बाद कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में मैं एक फेलियर था, और उस नेगेटिव थॉट के साथ मैं जी रहा था। तो इस सब में अच्छी चीज बस यही हुई कि मैं पढ़ाई पे जो फोकस था वो रहा, जैसे मैंने बताया MBA भी कंप्लीट हो गया, कैंपस प्लेसमेंट भी हो गई, लेकिन इन सब के बीच में शराब जारी रही, और वो इट बिकेम फ्रॉम बैड टू वर्स। सुबह 6 बजे उठ के आप पहली चीज जो ढूंढ रहे हो ये कि कहाँ बची रखी थोड़ी। तो वो उसको उसका बुरा असर तो होना ही था शरीर पर, बॉडी की कैपेसिटी
सर
होती है, कब तक आप उसको
सर
अब्यूज करेंगे। और इस सब के पीछे कारण सिर्फ यही था, एक तो माय मेंटल फ्रेजिलिटी, मेरे मेरा अंदरूनी रूप से कमजोर होना। मैं अगर मेंटली स्ट्रांग होता तो ये सब की नौबत ही नहीं आती। तो वो एक कारण था इस सब का। और दूसरा कारण ये था कि आई थिंक एक सबसे बड़ा कारण वही था, और उसी कारण की वजह से मैं नेगेटिव हो गया बहुत ज्यादा। नेगेटिव जब आप हो जाते हैं तो यानी कि डिप्रेस, मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो चुका था, मेरी सेल्फ वर्थ 0 हो चुकी थी मेरी नजरों में, जबकि ऐसा कुछ नहीं था जो आपको ये सब फील करवाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था लाइफ में। फेलियर किसकी लाइफ में नहीं आता।
सबकी लाइफ में आती है राइट
इट्स नॉट एज दे से ना, इट्स नॉट हाउ मेनी टाइम्स यू फेल, इट्स हाउ क्विकली यू गेट अप डिफाइन्स अ पर्सन। थॉमस अल्वा एडिसन कुछ 3,000 बार कोशिश करी तब वो बल्ब बना पाए। सोचो दूसरी बार में सोच लेते हैं मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं तो यूजलेस हूँ। वो सब छोड़ो, हमारे SSB के रिजल्ट जब अनाउंस होते थे तो उससे पहले वो कहानी बताते थे कि भाई यहाँ पर अमिताभ बच्चन भी आ चुके हैं, शाहरुख खान साहब भी आ चुके हैं, APJ अब्दुल कलाम साहब भी आ चुके हैं जो यहाँ से रिजेक्ट हो गए। तो यहाँ से अगर आप रिजेक्ट होकर जाते हो तो इसका मतलब दुनिया का अंत नहीं हो गया है। और उनका बड़ा ही क्लियर था कि हम कुछ पैरामीटर्स पर कैंडिडेट्स को जज करते हैं। हर इंसान के अंदर सैकड़ों क्वालिटीज होती हैं, हम उनमें से 13 क्वालिटीज देखते हैं। कॉज का सिर्फ सिंपल क्राइटेरिया होता है, वो 13 क्वालिटीज जज करते हैं बस। वो 13 क्वालिटीज या 15 क्वालिटीज में अगर आप खड़े उतरते हो, वो दिखती हैं उनको तो वो ले लेते हैं, नहीं दिखती हैं तो नहीं लेते हैं। तो अगर आपके अंदर 15 क्वालिटीज नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो हैं, इसका मतलब ये है कि हजारों में से -15, बट यू स्टिल हैव दोज रिमेनिंग 1,000 -15 क्वालिटीज विद इन यू। लेकिन ये सब समझने के लिए दिमाग जो में एक पॉजिटिव आउटलुक और अप्रोच होना जरूरी है, जो उस समय मैं खो चुका था। इस वजह से बहुत शराब 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 शराब, और उस शराब का अंत होना ही था। या तो आप बातों से सीखो, लोग आपको मना करते हैं, मेरे परिवार वालों ने बहुत मना किया, और एक पॉइंट के बाद मुझे बहुत एहसास होने भी लगा। तो मैंने हर चीज देखी है। मैंने नेगेटिव होने के बाद शराब पीने का असर जो होता है वो देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि वो शराब जब एक एक थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाती है उसके बाद क्या होता है
उसका जो सिवी आउटकम
ना। कहने का मतलब ये कि एक पॉइंट के बाद आपको एहसास है कि आप गलत कर रहे हो, आपको एहसास है कि ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप छोड़ नहीं पाते। मैंने दोस्तों से बात करते हुए ये बात कही है, अपनी मम्मी से ये बात कही है कि मैं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन हाँ तब इतना मुझे अवेयरनेस नहीं थी कि शायद मैं अगर छोड़ना चाहता था इतना तो मैं कहीं किसी रिहैब में चला जाता, क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट अर्ली 2000। इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी कि इतनी ओपनली लोग बात करें और रिहैब में चले जाएं। तो रिहैब में मैं जा नहीं पाया। तो जब आप बातों से नहीं सीख पाते हैं तो आप हादसों से सीखते हैं। जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी। तो
बिल्कुल
हादसा हुआ मेरे साथ, इतनी बुरी तरह मैं बीमार पड़ा, मेरे सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करना बंद कर दिए, शॉक में चले गए क्योंकि पैंक्रियास फट गया। सिवियर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस विद रीनल फेलियर में बचने के चांसेस 15% होते हैं। थैंकफुली 35 दिन स्ट्रगल करने के बाद मैं बच गया, और 6 महीना लगे मुझे नॉर्मल होने। लेकिन उस 1 महीने और उस 6 महीने ने मुझे बहुत मौका दिया अंदर झांकने का, बिना किसी नशे के। आप नशा छोड़ो, आप तो खाना भी आपका बड़ा लिमिटेड हो रहा था उस समय, तो नशे का तो आप सोच ही नहीं सकते हो। और इतना तकलीफ झेलने के बाद फिर नशा जो है आपको समझ में आ जाता है कि उसके गलत परिणाम क्या हो सकते। तो तब से, यानी कि मैं 2005 जनवरी 31 जनवरी 2005 को आखिरी बार मैंने शराब पी थी, उसके बाद मैं अस्पताल में एडमिट हो गया था, और 4 मार्च 2005 को मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ था। ये तारीखें एकदम पत्थर पे लकीर की तरह एकदम चिपकी हुई हैं, क्योंकि ये तारीखें वो तारीखें हैं जब मेरी जिंदगी बदली।
बिल्कुल
शुरुआत
बिल्कुल
हुई अस्पताल पहुंचने से और खत्म हुआ अस्पताल से निकलने के बाद। उस दौरान बहुत मौका मिला ये देखने का कि अरे बाप रे मैंने क्या कर लिया अपने साथ, अरे बाप रे मैंने क्या कर दिया अपने परिवार वालों के साथ। कि मैंने तो भाई कहीं ना कहीं मजे भी लिए ना, शराब पीने में मजा भी तो आता है। शराब आप इसलिए भी पीते हो कि उस नेगेटिव थॉट से आप क्विक फिक्स ढूंढ रहे हो नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए, तो मजा तो लिया आपने, लेकिन आपकी फैमिली ने तब भी उसके खराब परिणाम भुगते, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास से आ रहा था। आप कहीं ना कहीं से, मैंने तो कबाड़ घर के बेचे हैं चुपचाप, चोरी करी है शराब पीने के लिए, बहुत कुछ किया है। और वो चीज जो एक नशे की लत से गुजर रहा इंसान कर सकता है या करता है, वो मैंने किया है। एग्रेसिव बहुत हो गया था उस दौर में, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, सबसे लड़ता रहता था, बहुत डार्क फेज था लाइफ। लेकिन तो मैं लकी था, मैं खुशनसीब था कि ईश्वर ने मुझे वहां से निकाल दिया, और ना केवल निकाला फिजिकली बल्कि मेंटली भी निकाला, कि उस कष्ट ने, उस तकलीफ ने, उस बीमारी ने मुझे ये देखने की आंखें दी, दृष्टि दी कि मैं कितना गलत कर रहा था। और मैं न सिर्फ अपने साथ गलत कर रहा था, व्हेन यू आर एन इंडिविजुअल यू आर नॉट एन, व्हेन यू हैव अ फैमिली यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, एवरीथिंग दैट यू डू इट्स कॉन्सिक्वेंसेज आर बॉर्न बाय एवरीवन अराउंड यू, एट लीस्ट पीपल हु आर क्लोज टू यू।
यस,
तो हमने गलती करी, सजा सबने भुगती, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा भुगती, तो वही हाल हमारे साथ हुआ। तो खैर अच्छी बात यह है कि आंख खुल गई, गिरने के बाद खुली लेकिन खुल गई, पॉजिटिविटी आ गई, ये दिखने लगा कि लाइफ में इट इज नॉट ओनली अबाउट अचीविंग वन थिंग, इट इज नॉट ओनली अबाउट रनिंग आफ्टर वन थिंग, दैट वन थिंग इफ इट डजंट हैपन समथिंग एल्स दैट इज रिटन फॉर यू, डेस्टिन्ड फॉर यू, यू हैव टू मूव ऑन। पर हाँ, सबसे जरूरी होता है इस बात का एहसास करना कि ठीक है, शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है या मैं इस चीज के लिए नहीं बना। इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम दिस ऑल्सो। जितना कि ये जरूरी है कि फोकस के साथ किसी चीज के लिए लगे रहें निरंतर, उतना ही ये भी जरूरी है किसी पॉइंट पर ऑब्जेक्टिवली ये एनालाइज करके ये एहसास कर लेना कि सम थिंग्स इन लाइफ आर मेंट नॉट टू बी, और इफ दे आर मेंट नॉट टू बी देन उन पे सर फोड़ने से कोई फायदा नहीं।
सर जैसे आपने जिक्र भी किया है कि जैसे हरिवंश राय बच्चन जी की जो जो अल्फाज होते हैं कि मन का हुआ तो अच्छा और नहीं हुआ तो और अच्छा, आपने जिक्र भी काफी बार इस चीज का किया हुआ है, लेकिन कंप्लीटली
ये मेरे लाइफ का मंत्र है, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो और भी अच्छा,
और अच्छा।
ये पढ़ा हमने बहुत पहले, समझा उस फेज के बाद और समझा तब से लेकर आज तक के दौर। वो ये कहते भी हैं कि मन का हो तो क्यों अच्छा और मन का ना हो तो क्यों और भी अच्छा। कहते हैं कि मन का हो तो अच्छा, तो आपको तो खुशी मिल गई, वाह बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर मन का नहीं हुआ तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि इसका मतलब है कि ऊपर वाले के मन का हो रहा है।
यस,
और ऊपर वाले का जो मन का होगा वो अब आपके लिए लॉन्ग रन में कभी बुरा हो ही नहीं सकता,
हो नहीं सकता। यस,
ये सोच है इन पंक्तियों के पीछे, और इसका मजमूम, इसका निचोड़ मुझे समझ में आया है पिछले 15 सालों में, जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब चीजें, आज भी जब कुछ चीजें नहीं होती हैं फिर आगे जाके समझ में आता, अच्छा वो जो नहीं हुआ उसके पीछे एक चीज निहित थी,
वजह थी।
कई बार तो जब कुछ चीजें नहीं हुई और मैंने झांक के देखा है अंदर या आसपास, तो समझ में आया कि कमी मुझ में है, तो वो जो नहीं होना है वो एक मौका है अपनी उस कमी को सुधारने का, क्योंकि अगर वो समय हो जाता तो शायद आप उस कमी तक पहुंच ही नहीं पाते और आप उस कमी के साथ आगे बढ़ जाते,
right.
जो आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ज्यादा परेशान कर। तो ये चीजें हादसों से ही सीखी, हादसों से ही समझी, लेकिन समझी सबसे अच्छी बात, समझ गया। 2005 31 जनवरी आखिरी शराब का घूंट पिया था, आज हम 22 जनवरी 2024 में बैठे हुए हैं, मैंने आज तक शराब को हाथ भी नहीं लगाया है, तो ये एक अचीवमेंट है। वो एक सीख थी जो मिलनी थी, जो मेरे लाइफ में कुछ होना था जो मैं नहीं कर पा रहा था, तो एक दूसरे तरीके से मौका दिया गया करने का उसको, वो मैं कर पाया। उसके बाद फिर लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि आउटलुक चेंज हो गया, अब मुझे पॉजिटिविटी दिखाई देने लगी, मुझे दिखाई देने लगा कि जब दरवाजे बंद होते हैं तो खिड़कियां खुलती, लेकिन वो खिड़कियां खुली हैं उनको देखने के लिए विजन चाहिए, आंखें चाहिए, नजर और नजरिया, ये दोनों चाहिए होता है। जब नजरिया बदला तो नजर अपने आप बदल गई, नजर अपने आप खुल गई और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज दिखने लगी। अच्छा, एक और गलती हम करते हैं, हम सभी, मैंने बहुत करी है खासतौर पर, मैं बड़े बड़े इवेंट्स ढूंढता हूँ लाइफ में, था कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा हो जाएगा। लाइफ इज नॉट अबाउट सेलिब्रेटिंग बिग मोमेंट्स, इट्स अबाउट सेलिब्रेटिंग दोस स्मॉल माइलस्टोन्स।
यस,
क्योंकि बड़े मोमेंट्स तो बहुत कम आते हैं, अगर उन्हीं का इंतजार करते बैठेंगे तो खुश होने के मौके ही नहीं मिलेंगे।
yes.
बड़े माइलस्टोन्स कितने हैं आपके लाइफ में जो हम सोच सकते हैं? 5, 6, 7। अगर 60 साल का जीवन है तो मतलब अगर उसको आप डिवाइड करोगे तो तकरीबन हर 5 साल पे आपको एक माइलस्टोन मिल पाएगा, तो अगर ऐसे आप बैठे रहोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। अबाउट सेलिब्रेटिंग दो स्मॉल थिंग्स, कि आज एक कुछ अचीव कर लिया, कुछ नई अच्छी रिकॉर्डिंग करके आया, वाह कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाते हैं आज, मजा आ गया, कोई एक ऑडिशन अच्छा करके आ गए, हमको जो जैसा हम चाहते थे पोर्ट्रे करना वैसा हो गया, वाह बहुत बढ़िया, चलो एक ड्राइव करके आते हैं। लाइफ लाइफ इज अबाउट सेलिब्रेटिंग दोस मोमेंट, ये भी समझ में आया उन हादसों से गुजरने के बाद। तो वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज मैंने पहचाननी शुरू करी, एक नौकरी से दूसरे में पहुंचा, सरकारी नौकरी में पहुंचा, सरकारी नौकरी में मौका मिला बॉम्बे आने का, बॉम्बे आके बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात होने लगी, किसी ने बताया आपकी आवाज़ अच्छी है, मैंने कहा नहीं मैं गा नहीं पाता हूँ, बोले नहीं आवाज़ के साथ और भी बहुत कुछ करते हैं, मैंने कहा क्या, आप सोचो मन का ना हो तो और भी अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला रास्ते बना रहा है। मैं उस शख्स को नहीं जानता था जिसने मुझसे कहा कि तुम्हारी आवाज अच्छी है,
सर, ये
नहीं
गैदरिंग थी,
जानता था।
आपने जिक्र किया है पहले, एक
हाँ
जैसे
हाँ
एक फ्लैट में से जैसे गेट टुगेदर
यस
होता है, तो उसमें आपको किसी ने आके कहा कि आपकी आवाज अच्छी है।
सोचिए किसी दोस्त की गर्लफ्रेंड ने जिससे मैं पहली बार मिल रहा था, वो गैदरिंग भी क्यों होती थी, कारण अगेन गॉड कंस्पायर्स, गॉड मेक्स वे फॉर यू टू रीच वेयर ही वांट्स यू टू रीच। मेरे को जो नौकरी मिली थी भारत सरकार की, सो आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, आई वाज लुकिंग आफ्टर इंपोर्ट फाइनेंसिंग। भारत सरकार की नौकरियों में तनख्वाहें नॉर्मल होती हैं बट पर्क्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं, तो मुझे पाली हिल में एक 2 BHK फ्लैट मिला हुआ था। अब बॉम्बे में रहने वाला समझ सकता है कि पाली हिल में फ्लैट होने का क्या मायने,
बिल्कुल
और खास तौर पर तब जब आपके नेबरहुड में दिलीप कुमार और संजय दत्त साहब का घर। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीजें क्योंकि इसका एक रिलेवेंस पूरी कहानी, जब ये बात हमारे बैचमेट्स और दोस्तों तक पता पहुंची और ये भी पता चला कि भाई ये शराब नहीं पीता है, तो हमारे घर में आफ्टर पार्टीज होने लगी, लोग पार्टी करके बैंड्रा में आते थे मेरे घर पे, आफ्टर पार्टी करते थे क्योंकि उनको पता था दो बेडरूम का घर है बड़ा सा, वो पार्टी करो और फिर ये तो घर भी छोड़ देगा क्योंकि शराब नहीं पीता है, तो ड्राइव करके घर भी छोड़ देगा अपनी गाड़ियों से, हम लोग मतलब हमारी गाड़ियां चला के मुझे छोड़ भी देगा। तो इस चक्कर में हमारे घर में लोग आने लगे, और ऐसे ही गैदरिंग में वो मोहतरमा आई, शिवांगिनी नाम था उनका, उन्होंने कहा अच्छा अब आप देखिए, उनको कोई जरूरत नहीं थी कि इस कॉन्वर्सेशन को और आगे ले जाके, वो ले गई, वो मुझे अगले दिन स्टूडियो में ले गई एक, कि अच्छा तुमको नहीं पता है ना क्या होता है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। शी टुक मी टू स्टूडियो, स्टूडियो वाले ने की भरमनसाहत की उसने एक नौसिखिए नए आदमी को बोला अच्छा तुम चलो जरा आवाज रिकॉर्ड करो अपनी। तो मैं पहली बार बूथ में गया, वो सब लगा के मैंने माइक पे अपनी आवाज सुनी, मैं गिर गया, मैंने कहा माय गॉड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ। 29 साल की, 29.5 साल की उम्र में मैंने एहसास किया कि ये है जो मैं करना चाहता हूँ जिंदगी। तो मैं आज भी जब कॉलेजेस में टॉक कर देने जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि वॉट यू थिंक योर पैशन इज करेंटली इज बेस्ड ऑन द बूफे ऑप्शन दैट आर अवेलेबल टू यू। हमेशा अपनी आंख और कान खुले रखने चाहिए, कब क्या चीज आपको इंटरेस्ट कर जाए, नई चीज जो आपने पहली बार देखी होगी लाइफ के एक नए मकाम पर, अलग पड़ाव पर, उसको एक्सप्लोर जरूर करें। आपका पैशन आपकी लाइफ में क्या है, ये आपको तभी पता चलेगा जब आप अब चीजों को एक्सप्लोर करेंगे कि अच्छा साइकिलिंग है, चलो मैं जरा करके आता हूँ थोड़ी सी साइकिलिंग, अच्छा किसी ने हॉकी स्टिक दिए, चलो जरा खेल के आते हैं थोड़ी सी हॉकी, किसी ने कहा आवाज अच्छी है स्टूडियो में गए जब रिकॉर्ड करा, अच्छा चलो देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आपने किया सब कुछ, हाँ ठीक है बहुत 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 मजा आया, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अब जब मुझे लग गया कि वो मुझे पसंद है ये चीज, तो थैंकफुली क्योंकि माइंडसेट चेंज हो गया था, मैंने कहा ये इसको मैं थोड़ा परस्यू करूंगा, थोड़ा सीरियसली परस्यू करूंगा। अब यहां पर आता है लाइफ की मेरी तीसरी बड़ी लर्निंग, वो है डिफरेंस बिटवीन रिस्क एंड रेकलेसनेस, रिस्क एंड ब्लाइंड टर्न, टेकिंग रिस्क एंड कैलकुलेटेड रिस्क। तो
कैलकुलेटेड
जब मुझे वो सब पता चल गया तो मैंने कहा ठीक है ये तो मुझे करना है, लेकिन कैसे करूं, सरकारी नौकरी में रहते हुए क्या कर सकता हूँ। तो मैंने कहा पहले ट्रेनिंग करनी चाहिए, बातें करी लोगों से तो समझ में आएगी। तो मैंने दर्पण मेहता साहब के पास वर्कशॉप करी 3.5 महीने की, तो कुछ समझ में आया चीजें, फिर मुझे समझ में आया इस नौकरी में रह के मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने फिर वो नौकरी छोड़ दी और मैं रेडियो स्टेशन में नौकरी करने लगा, सेल्स टीम 92.7 बिग FM।
बिग FM।
2.5 साल मैंने वहां सेल्स की नौकरी करी, वहां पे भी अगेन मन का ना हो तो और अच्छा, भगवान ने और लोग भेज दिए, हमारे सुपर बॉस जो थे अर्जुन सिंह बरन, वो इतने कोऑपरेटिव थे, उन्होंने प्रोजेक्ट क्रिएटिव टीम को बोल दिया इसकी आवाज यूज कर लिया करो क्रिएटिव बनाने के लिए, तो वहां से मुझे माइक्रोफोन प्रैक्टिस मिलने लगी। फिर एक पॉइंट पे उन्होंने कह दिया तुम 9 बजे तक काम करने के बाद मैं तुम्हें स्टूडियो एक्सेस दे देता हूँ, जाओ। तो मैं 8-9 बजे तक अपना काम खत्म करके मुझे स्टूडियो एक्सेस मिल गई थी, स्टूडियो में बैठ के अपने पास रिकॉर्ड किया करता था अपने
रिकॉर्ड
आप।
वगैरह
फिर उनको लगा अच्छा इसका इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा, तो उन्होंने मुझे उनका बिग हाउस के इन हाउस ट्रेनर थे कोटस वाड़िया साहब के पास भेजा ट्रेनिंग के लिए 3 महीने की, और बहुत पैसे लगते थे, वो पैसे बिग एफएम ने दिए। 3.5 महीने की मैंने कोटस के पास जो ट्रेनिंग करी, उस ट्रेनिंग ने मेरी लाइफ बदल दी, सोच और लाइफ दोनों बदल दी। मतलब तब तक मुझे था कि मैं करूंगा कब करूंगा मुझे नहीं पता था, कोडर्स के पास जाने के बाद ये तय हो गया कि अब मेरा करियर इसी में है, वॉइसिंग।
वॉइसिंग में
वो कॉन्फिडेंस भी उन्होंने दे दिया, वो टूल्स भी उन्होंने दे दिए, और आखिर जो पुश था वो हुआ गीतांजलि के आने के बाद। हमारी जब एंगेजमेंट तय हो गई तो मैंने उनको बताया गीतांजलि को कि भाई देखो शादी हो रही है, पर एक बात समझ लो कि ये नौकरी मैं हमेशा शायद ना करूं, मेरा इंटरेस्ट अब इसमें जाग गया है, इस फील्ड में मैं नौकरी छोड़ के, क्योंकि पैकेज अच्छा था तो ये बताना जरूरी था कि ये पैकेज हमेशा नहीं रहेगा।
ऑफ कोर्स
तो उन्होंने जो जवाब दिया वो अगेन लाइफ चेंजिंग मोमेंट, शी सेड अगर कुछ करना है तो अभी कर लेना चाहिए क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, अभी आसानी से हो जाएगा। शी वॉज ऑल्सो वर्किंग एट दैट टाइम। तो वो एक आखिरी दरवाजे पे खड़े होने के बाद ना खटखटाने की कई बार हिम्मत नहीं होती, या दरवाजा पुश करके खोलने की हिम्मत नहीं होती है, वो हिम्मत उन्होंने दी।
एक सर बहुत बड़ा एक एसेट भी कह सकते हैं, या फिर एक बहुत बड़ी एक ना मोटिवेशन की, जो आपके लाइफ पार्टनर से अगर आपको सपोर्ट मिलता है उस तरह का इस में जाने के लिए, बहुत बड़ा फैक्टर है फैमिली का ऑफकोर्स।
बहुत ज्यादा, उसके बिना आप कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है, और जब आप एक पार्टनरशिप में चल रहे होते हैं तो आप सोलो डिसीजंस नहीं ले सकते,
नहीं ले सकते
ना ले सकते ना लेते हैं। और हमारी जो अपब्रिंगिंग है उसकी वजह से हमारे इनहिबिशंस बहुत ज्यादा हैं, मिडिल क्लास होने की वजह से, कि नौकरी कैसे छोड़ें। उस इनहिबिशन की वजह से कई लोग आखिरी कदम नहीं उठा पाते हैं। इस बात की महत्ता इम्पोर्टेंस को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता कि लाइफ पार्टनर का करियर के प्रति सपोर्टिव होना कितना जरूरी है, क्योंकि जब उन्होंने ये कहा कि आप ये कोशिश कर लो, तो खाली वो मुझे पुश नहीं कर रही थी, वो भी उस स्ट्रगल का हिस्सा बनने की प्रक्रिया में शामिल हो रही थी। और ये बात उनको पता थी कि हाँ जब जब हम इससे कह रहे हैं कि कोई बात नहीं कोशिश अभी कर लो, तो इसका मतलब है कि अभी नौकरी छोड़ देंगे, वो पैसा आना बंद हो जाएगा, उसके बाद एक नई ऐसी चीज में जिसमें कितना पैसा कब आएगा वो हमें पता ही नहीं, उसकी तरफ हम कदम रख रहे हैं, तो हमें बहुत सारे त्याग, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेंगी। तो इतनी सारी चीजों को उन्होंने एक झटके में हाँ कर दिया, ये बहुत बड़ी बात होती
बहुत
है।
बड़ी बात है
ये
सर।
आई थिंक ये ऊपर वाले का ही कुछ वो है, कि ऐसा पार्टनर और उस पार्टनर की ऐसी सोच होना। और गीतांजलि का टू हर क्रेडिट ना केवल इसमें बल्कि आगे भी, मैं आपको स्टोरी के अगले हिस्से में जब बताऊंगा कि एक्टिंग कैसे शुरू हुई या वॉइस कोचिंग कैसे शुरू हुई, काफी बड़ा क्रेडिट उनको जाता है। मेरे अंदर टैलेंट और नॉलेज थी, पर उस टैलेंट और नॉलेज को स्ट्रक्चर करके आगे बढ़ाना, उसका काम, जामवंत का काम हमारे जीवन में उन्होंने किया है। शादी के बाद, शादी से पहले हमारी जामवंत हमारी माताश्री हुआ करती थी, शादी के बाद हमारी जामवंत जो है, जामवंत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो हनुमान जी जब लंका
हाँ
जाने की बारी आई समुद्र लांघ के, तो जामवंत ही थे जिन्होंने उनको उनकी शक्तियों का एहसास दिलाया था कि नहीं तुम कर सकते हो, हनुमान जी ने मना कर दिया था कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो टैलेंट जो भी थोड़ा बहुत था वो टैलेंट बाहर आया, और वो टैलेंट ने एक एक आकार लिया उसके पीछे, जो कुम्हार पॉटरर्स, जो पॉटरर्स थे जिन्होंने उसको आकार दिया, वो हमारी माताश्री थी, ये बेगम है, गीतांजलि। तो उन्होंने उस समय जब ये पुश किया तो मैंने नौकरी छोड़ दी और आ गया 2009 में पूरी तरह से डांस इंडिया डांस सीजन वन मेरा पहला शो था। फिर वहां से जो है काम मिलने लगा छोटा 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 छोटा। 1 साल के बाद एक शो मिल गया मुझे, 2-2.5 महीने के ऑडिशन वो सब करने के बाद, उसका नाम था बिग बॉस। बिग बॉस से फोन आया था एक बार अगस्त 2010 में कि हम शो की दूसरी आवाज की तलाश कर रहे हैं, आप अपनी सीडी देके जाइए। सीडी देने के 2.5 महीने बाद फोन आया, आप ऑडिशन के लिए आइए। ऑडिशन देने के अगले दिन फोन आया, आप शेफ सेलेक्ट हो गए, पैसा बताइए। तो वो 2010 में जब ये शो मिल गया, तब जीवन थोड़ा बदल गया, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, हम आवाज का काम करते हैं, तो काम मिलने लगा उसके बाद। तो यहां से वॉइसिंग का एक तो अच्छा फेज था, वो
अच्छा फेज
शुरू हो गया। फिर वॉइस ओवर्स करते रहे करते रहे। 2015 तक आते आते, अब क्योंकि तुम वॉइसिंग समझते हो थोड़ा सा, तो तुम्हें ये भी पता होगा वॉइसिंग में वॉइस ओवर्स एक अलग चीज होती है, डबिंग एक अलग चीज,
डबिंग अलग चीज होती है। यस,
मैं क्योंकि वॉइस ओवर्स में घुस गया तो डबिंग पीछे छूट गई। और जब आप वॉइसिंग बहुत ज्यादा करने लगते हैं तो वॉइसिंग क्या होता है ना, एक वो भी एक लत की तरह है, क्योंकि थोड़ा टर्न अराउंड टाइम कम है, पैसे थोड़े से ज्यादा हैं, तो जब उस तरफ बहने लगते हो तो आपको दूसरी कई चीजों का ख्याल नहीं आता। करते गए करते गए, 2014 के आसपास ये समझ में आया कि एक तो पहली चीज, वॉइस ओवर करते करते आप एक तरीके से, एक पैटर्न बन गया आपके हर चीज को, हर स्क्रिप्ट को अप्रोच करना, और दूसरा कि डबिंग का काम हम नहीं कर रहे हैं, और तीसरा ये भी एहसास होगा कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वॉइस ओवर कर रहा हूं तो शायद अब डबिंग करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरी डिलीवरी जो है वो उस तरह से सेट हो गई, डबिंग अदायगी मांगती है, डबिंग बहुत ज्यादा एक्टिंग मांगती है, वॉइस एक्टिंग मांगती है। वॉइस ओवर्स में आप अदायगी है, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं उसमें अदायगी होती है, लेकिन ज्यादातर आप एक पैटर्न में अपनी बेस का इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन दे रहे होते हो। तो मुझे लगा कि मैं अब उसमें ना फंसने लगूं जहां पर आप हमेशा थोड़ा सा बेस में ही बात करते हो और कोशिश करते हो कि आपका बेस है वो, यू नो, आप समझ रहे हो। तो 2015 में ये 14-15 के आसपास ये एहसास हो गया, 14 के आसपास। तो मैंने ये सोचा कि यार डबिंग का काम अब मैं करना है, कैसे मिले, क्योंकि ये परसेप्शन भी बन गया था और ये फैक्ट भी था कि मैं थोड़ा अदायगी में कमजोर था और वॉइसिंग करते करने की वजह से और ज्यादा फ्लैट हो गया था। किसी ने कहा थिएटर करना शुरू करो, उससे आवाज खुलती है और एक एक्सप्रेशन अच्छा होता है। तो हमने एक नया थिएटर ग्रुप फॉर्म किया और उसमें हमने प्ले करना शुरू की अंग्रेजी में। उससे पहले मैं बैरी जॉन के पास गया, उनके साथ 3.5 महीने की एक्टिंग वर्कशॉप करी, जो कि अगेन गीतांजलि, तो मैं कहता रहता था मैं जाऊंगा जाऊंगा, हाँ नहीं कहा नहीं, उन्होंने फीस भर दी जाकर।
ओके,
तो जब फीस भर गई तो फिर
तो
वो जो करेंगे 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 से इट चेंज टू परसों से जाना। तो वो हो गया, हालांकि वो करने के बाद भी, थिएटर करने के बाद भी डबिंग का काम बहुत ज्यादा शुरू नहीं हो पाया। परसेप्शन है, तोड़ने में समय लगता है, और वो टूटता तभी है जब आप काम करो, और काम कर कर करके ही आप और कुछ अच्छा सीखते हो। लेकिन उस चीज ने मेरे अंदर के एक्टर को थोड़ा सा जगा दिया। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करूंगा, मैं थिएटर करने लगा। हमने जो ग्रुप फॉर्म किया तो उसके हमने प्ले शुरू किया, अलेक्जेंडर वर्सेस चाणक्य, उसमें मैं चाणक्य था। हमने 25-26 शो उस प्ले के कर डाले। फिर करते करते मुझे समझ में आया कि अब अभिनय को थोड़ा और निखारने के लिए इसकी अलग अलग टेक्निक्स को थोड़ा देखते हैं। तो जेफ गोल्डबर्ग हैं जो मेथड एक्टिंग सिखाते हैं, उनके पास गया, उनके साथ मैंने तकरीबन 6 महीने की वर्कशॉप्स करी, प्राइमरी और इंटरमीडिएट दोनों करी मैंने उनके साथ। और वहाँ पर रहते हुए मैंने आर्थर मिलर का एक प्ले है ऑल माई सन्स, उसका हिंदी अडेप्टेशन, उसके कई शोज, आई थिंक हम लोगों ने 12 या 14 शोज उसके करे। और वो करते हुए जब हम रिहर्सल्स करते थे तो मैं आवाज पे लोगों को बता दे टिप्स देता रहता था। तो ये ख्याल आया कि क्यों ना ये जो नॉलेज है ये और लोगों के साथ शेयर की जाए, और वहां से ट्रेनिंग का एक वो शुरू हुआ जरिया, एक्टर्स को थोड़ा थोड़ा ट्रेन करने लगा। रिसेंटली एक एंडेमोल का शो था, इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार, उसमें मैं वॉइस ओवर कर रहा था और उसमें एक हुआ कि वॉइस ट्रेनिंग एक्टर्स की करा दी जाए। तो 2 एपिसोड मैंने वो वॉइस ट्रेनिंग कराई और वो दिखा दिया उन्होंने, इट वॉज ब्रॉडकास्ट। सो ये हो गया कि हाँ मैं वॉइस ट्रेनिंग कराता हूँ, फिर वहां से मैं वॉइस ट्रेनिंग कराने का। वो उस शो पे ही मुकेश छाबड़ा जी से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि आप ऑफिस आइए, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ और फिल्म जो है हीरोइन की वॉइस ओवर पे चलेगी, तो थोड़ा वॉइस ओवर उसको इंट्रोड्यूस कर दीजिए, जस्ट ट्रेन हर इन लिटिल बिट इनटू वॉइस। उनके ऑफिस गया, संजना से मिला, सडनली उन्होंने देखा और बोले आप कह रहे थे थिएटर वगैरह करते हो, मैंने कहा तो पहले ऑडिशन के लिए नहीं आए कभी, मैंने कहा कभी ऐसा सोचा नहीं कि कैमरे एग्जाम करेंगे, मैंने कहा ऑडिशन कर सकते हैं क्यों नहीं। तो उन्होंने फैमिली मैन के लिए एक ऑडिशन कर दिया और अगले दिन
ओके
राजन डी के सर के ऑफिस से फोन आ गया और मैं हो गया। तो 2018 में मैंने फैमिली मैन वन की शूटिंग शुरू कर दी। जब शूटिंग शुरू की तो ये एहसास हुआ कि कैमरा एक्टिंग के लिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, और मैं फिर सौरभ सचदेवा के पास गया और उनके साथ, उनके पास माइजनर और कुछ टेक्निक्स में वो काम कराते हैं, उस टेक्निक में काम किया, मुझे बड़ा पसंद आया। तो आज भी जब भी मैं कुछ भी फंसता है मेरा मामला तो मैं सौरभ को फोन करके उनकी मदद ले लेता हूँ। तो ये जो सफर है ये तीसरा एक्टिंग का, वो वहां से शुरू हो गया और उस क्राफ्ट पे काम करने लगे, उस आर्ट फॉर्म को और अच्छी तरह से समझने लगे, ज्यादा मेहनत करने लगे। और अब जो है, अब बराबर का फोकस हो गया कि वॉइसिंग भी करते हैं और
राइट
एक्टिंग में भी, कोई लोगों के पास जा जाके बोलते हैं कि कुछ भी कैरेक्टर हो, ऑडिशन हो, तो आप प्लीज बिना झिझके। लोग कई बार सोचते हैं ना कि भाई ये वॉइस आर्टिस्ट हैं, ये अच्छा काम कर रहे हैं, पता नहीं ऑडिशन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी एक लोगों के जहन में आता है। तो वो मिथ चेंज करने के लिए लोगों से मिलना, लोगों को बताना, फिर अब तो टीम है जो टीम भेजती रहती है चीजों को। पर इस पूरे पिछले 4-5 साल में एक और चीज मैंने करी कि कॉन्शियसली डबिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने आप को मैंने पुश किया, लोगों को अप्रोच किया, बड़े बड़े स्टूडियोज को, मुझसे डबिंग और डबिंग का काम अब मिलने लगा। क्योंकि जब आप एक्टिंग करने लगते हो तो ऑटोमेटिकली अदायगी थोड़ी
अपने
सी
आप में
आने लगती है। तो अब मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि वो चेंज हो रहा है। थैंकफुली मैं उस मैं बेस में फंसा नहीं हूँ। अगर बेस में फंस जाता तो बड़ा मुश्किल होता है ये कर पाना। तो अब तो इस तरह से ये सफर यहाँ तक पहुंचा है। फिल्में हैं कुछ जो कर रहा हूँ जो रिलीज होने वाली हैं, कुछ वेब सीरीज हैं जो रिलीज होने वाली हैं जो कर चुका हूँ। तो ये 2024 में काफी काम है। जो अभी लास्ट मेरा जो प्रोजेक्ट था ताली, उसके लिए भी काफी लोगों ने पसंद किया, सराहा। सुष्मिता मैम का खुद का मैसेज आया उनको भी, क्योंकि इस शो के लिए कुछ आवाज में चेंज करना था, तो कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैंने उनको बस बताई थी, वॉइस नोट भेजा था बस। और इतनी ग्रेशियस है वो कि शो के बाद उन्होंने, मैंने उनको मैसेज किया कि बहुत अच्छा आपका काम था, तो उनका जवाब आया कि थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन,
राइट
थैंक यू फॉर बीइंग माय टीचर। मैं कहाँ का टीचर, मैं तो खाली दो तीन चीजें बताई, पर वो ग्रेशियस, अगेन यू नो ग्रेस है उनका कि वो मुझे अपना टीचर बोल दिया उन्होंने। मेरे काम की तारीफ करी कि सिर्फ तीन सीन है मेरे ताली में, बहुत इंपॉर्टेंट 3 सीन। उन्होंने कहा कि 3 सीन में आपने मतलब ऐसा कमाल किया है कि मतलब एक इम्पैक्ट छोड़ा है, तो ये मेरी कमाई।
और सर इट्स ग्रेट टू नो दिस एंड मैं ये पर्सनली मतलब ये मैं हमेशा जहन में था ये सवाल आपसे करूंगा एंड ऑफ कोर्स इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग आपका तो बहुत बढ़िया एक एक्सपीरियंस रहा होगा वर्किंग विद एक्टर्स लाइक ग्रेट एक्टर्स लाइक मनोज वाजपेयी के मेनन साहब के साथ आपने काम किया स्पेशल ऑप्स 1.5 में
विकी कौशल के
और
साथ अभी कर रहा
विके
हूँ।
अभी आप कर रहे हो
हाँ,
बहुत ही बढ़िया रहा होगा तजुर्बा उसका
एक्सपीरियंस मतलब हर एक्टर के साथ एक एक अलग सा एक्सपीरियंस रहा है। उनका प्रोसेस देखना, उनके प्रोसेस को समझना और उनसे सीखना। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मनोज सर, के सर, दिबेंदु सर के साथ, दिबेंदु भट्टाचार्य हैं बहुत अच्छे एक्टर
हाँ
हैं,
बहुत बढ़िया
अनदेखी है, अनदेखी मैंने अभी उनके साथ किया, इतना कुछ सीखने को मिला। हर्ष छाया सर, सूर्य तिवारी तो अनदेखी में है, विकी कौशल के साथ अभी काम कर रहा हूँ, तो उनका प्रोसेस देखकर, उनका कमिटमेंट देखकर क्राफ्ट के प्रति, आशुतोष राणा, विनीत सिंह, आशुतोष राणा जिस फिल्म में मैं हूँ, विकी कौशल के साथ जो फिल्म कर रहा हूँ उसमें आशुतोष राणा जी भी हैं, विनीत सिंह भी हैं। विनीत सिंह के साथ मैंने एक और शो किया हुआ है वेब सीरीज, उनका प्रोसेस और उनकी नॉलेज फिल्म मेकिंग को लेकर, उनकी जो नॉलेज इतनी जबरदस्त है, ये समझ में आया कि खाली एक्टिंग अगर आपको आती है अच्छी बात है, या एक्टिंग अगर आप कर रहे हो, पर अगर आपको पूरे प्रोसेस की नॉलेज है तो उससे भी आपको अभिनय में मदद मिलती है।
बिल्कुल
कैमरा एंगल से लेकर लाइटिंग से लेकर हर चीज की अगर आपको नॉलेज है तो आपका परफॉर्मेंस आप उन चीजों की समझ के साथ बढ़ा सकते हो। ये विनीत सिंह जी के साथ काम करके मुझे समझ में आया, सीखा मैंने ये चीज, क्योंकि कौशल के साथ काम करते हुए उनका कमिटमेंट वो एक अलग लेवल का कमिटमेंट है। विजय राज सर और हुमा कुरैशी और मृणाल ठाकुर के साथ एक फिल्म करी मैंने, वो भी नेटफ्लिक्स पे, पता नहीं नेटफ्लिक्स पे आएगी किसी और पे आएगी, पर इस साल के एंड तक आनी चाहिए। उनके साथ काम करने का एक अलग ही मजा, एक अलग ही प्रोसेस। इतने कमाल के अभिनेता हैं विजय राज जी, हुमा कुरैशी इतनी मेहनती एक्टर हैं, मृणाल ठाकुर इतनी मेहनती एक्टर, तो आपको सीखने का और इंस्पायर होने का बहुत मौका मिलता है इन लोगों के साथ काम करके। तो जब मैंने अभी डबिंग का जब मैं बता रहा था तो मैंने डबिंग करना शुरू कर दिया, तो खाकी में आशुतोष राणा सर की इंग्लिश की डबिंग मैंने करी।
ओके
और अब जो डबिंग करने का मेरा मेरी जो सोच है डबिंग करने के पीछे वो यही है कि एक तो अपनी वॉइस इंप्रूव हो, अदायगी इंप्रूव हो, दूसरा सीखने को मिलता है एक्टर्स को ऑब्जर्व करके, क्योंकि जब आप डब करते हो तो आपको बहुत सारी माइन्यूट चीजें ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। तो उनका परफॉर्मेंस खाकी में देख के मैं स्तब्ध रह गया। मैं जब उनसे मिला फिल्म के सेट पर अपने पहली बार, उनको बताया मैंने, एक तो इतने सरल आदमी है वो कि दिल खुश हो जाता है। तो आपका जो सवाल था ना कि इतने सारे अच्छे अभिनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला, मैं वाकई खुशकिस्मत, मनोज सर, के सर, आशुतोष राणा, विकी कौशल, उमा कुरैशी, इतने विजय राज साहब, इतने सारे कमाल के अभिनेताओं के साथ काम किया, और हर अभिनेता के साथ काम करके अभिनय की बारीकियां तो पता नहीं कितनी सीखी क्या नहीं सीखी, लेकिन एक चीज जो इन सब में कॉमन थी जो दिखी वो था आर्ट के प्रति प्रेम और क्राफ्ट के प्रति कमिटमेंट। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है लोगों के साथ काम कर।
और सर जो आपको जो वेब सीरीज में अवसर मिले हैं, जिससे आपने किसी में एज एन एक्टर, एज ए वॉइस एक्टर, ये अगर हम वेब सीरीज का अगर एक दौर देखें तो ये बहुत टॉप की वेब सीरीज है। मतलब अभी तक वेट हो रही है कि जी जैसे फैमिली मैन सीजन 3 कब आएगा, स्पेशल ऑप्स का सीजन कब आएगा, लोग इंतजार कर रहे हैं। लोग कभी भी जैसे कुछ इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट आती है तो लोग लिखने लगते हैं कि कब आ रहा है सीजन, हमसे इंतजार नहीं हो रहा। खाकी वॉज अनदर आई गेस सेम, इफ आई टॉक अबाउट द डायरेक्टर स्पेशल ऑप्स एंड नीरज पांडे सर, हाँ तो ये तो बहुत ही अभी तक इंतजार है। मैं खुद कभी देखता रहता हूँ, मैं तो खुद मैं बहुत शौकीन हूँ, मैं कभी जैसे अपना सारे असाइनमेंट्स करने के बाद जब रात को देखता हूँ तो दीज आर ऑल माय फेवरेट वेब सीरीज इन फैक्ट।
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अगेन एज आई सेड इट्स अनफॉर्चुनेट कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जितने भी प्रोजेक्ट किए हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट जिन जो बहुत सराहे गए, जिनकी बहुत प्रशंसा हुई, विच हैव बीन अप्रिशिएटेड अ लॉट। मैं इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक फिल्म करी है अभी तक साउथ की, उस फिल्म का नाम था 40777, कन्नड़ फिल्म थी रक्षित शेट्टी के साथ, दैट वाज माय फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज। ये हमने शूट करी थी 2020 में और रिलीज हुई थी 2022 में। बहुत कम बजट की फिल्म थी, 100 करोड़ के ऊपर उसने कलेक्ट किया था। अगेन लक, डेस्टिनी, नथिंग एल्स, मेरा कोई रोल नहीं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और मैं तो काम के लिए कभी ना करता ही नहीं, और आई बिकेम अ पार्ट ऑफ। सो जिस भी प्रोजेक्ट से जुड़े हैं खुशकिस्मती से वो सभी प्रोजेक्ट अच्छे निकल कर आए, कमर्शियली सक्सेसफुल हुए अलग बात, पर जब वो बन रहे थे तो उसमें जो कमिटमेंट था वही अपने आप में, और वही अपने आप में आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है।
तो सर इन टर्म्स ऑफ योर जो आपने पूरी अपनी जर्नी बताई, एक चीज़ तो मैं हमेशा मतलब जैसा आपने जिक्र किया कि आपने इतनी सारी वर्कशॉप्स की, वॉइसिंग की, एक्टिंग की, आप सर उन लोगों को, मैं सही वर्ड का यूज़ करूँगा, बिगिनर्स जो इस वॉइसिंग में अपना एक कह सकते हैं प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उसमें किसके बारे में पैशनेट है, उनको आप क्या इस डिजिटल दौर में, आप आगे भी जैसे AI का भी एक अलग उसमें है, उनको क्या एक सजेशन या एडवाइस अपने तरफ से देना चाहेंगे?
सीखने की प्रक्रिया का अंत कभी नहीं होना चाहिए, ये बहुत जरूरी, क्योंकि जब आप सीखते रहते हैं तब आपका माइंड खुला रहता है, और जब माइंड खुला होता है तो नए अवसर आपको दिखाई देते रहते हैं। तो इसलिए सीखते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे बेहतर करते जाएं आगे। तो जब आप सीखते हो तो जाहिर सी बात है आप उस काम में और बेहतरी पैदा करते हो। उसके अलावा होता यह है कि सीखने की वजह से आपका माइंड फ्लेक्सिबल रहता है हमेशा और ओपन रहता है, और जब माइंड ओपन रहेगा तो नई अपॉर्चुनिटीज जो आपके आसपास आ रही होंगी आप उनको पहचानने और उनको पकड़ने के लिए ज्यादा अच्छी तरह से तैयार रहोगे। इसलिए सीखते रहना बहुत जरूरी है, ए ताकि आप बेहतर होते जाओ, और बेहतर होते रहना बहुत जरूरी है, वरना कुछ सालों में लोग कहने लगेंगे अरे यार नहीं कुछ नया लाओ। दूसरा, सीखने की वजह से आप नई अपॉर्चुनिटीज पहचान पाओगे, जो कि बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हम ऐसे दौर में हैं जब एक काम जो आज हम कर रहे हैं वो कब सडनली बेकार हो जाए, ऑब्सोलीट हो जाए, आपको नहीं पता चलेगा। तो ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि नई अपॉर्चुनिटीज को हम पहचानते हुए आगे बढ़ते रहें, कि हम नई नई चीजें करते रहें और कुछ ना कुछ नए आयाम, एक ही काम को करते रहना आज की तारीख में मुझे लगता है अकलमंदी नहीं, ऑल्टरनेट पैरेलली उसी से जुड़े हुए ही सही, पर अलग अलग एवेन्यूज हमको खोजते रहने चाहिए,
डाइवर्सिफाई
और
करना जरूरी है।
बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट टर्म एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन इज द की।
बिल्कुल सही कहा सर।
तो यही मेरा सब एक ही चीज, जो जो न्यू कमर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको एक्चुअली एक दो तीन चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। एक, वो बी ओपन टू डाइवर्सिफिकेशन, फॉलोइंग योर पैशन एंड मेकिंग अ करियर इन इट इज नॉट द एंड ऑफ द रोड। काम एक्चुअली उसके बाद शुरू होता है, जब आप अपना करियर बनाने लगते हैं तब उसके बाद काम शुरू होता
शुरुआत
है।
ऐसे होती है।
दूसरी चीज, बी रेडी टू एक्सेप्ट नो इन अ पॉजिटिव वे। हर ना एक नया अवसर ला सकता है अगर आप उस ना को ऑब्जेक्टिवली देखना शुरू करें। अगर आप किसी भी ऑडिशन में रिजेक्शन को इस तरह से अप्रोच करें कि अच्छा देखते हैं क्या और कर सकते थे, क्या कमी रह गई, तो आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाए। और अगर आप हर ना पे अपने ऊपर सवाल उठाने लगेंगे तो बहुत जल्दी बर्नआउट होके इस रेस से बाहर हो जाएं। हर ना एक अवसर है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। ये वो है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
क्या उसके क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो।
सुधार करो। तो उसमें जो ये
यस
पंक्ति है वो बहुत जरूरी
यस
है कि कभी भी अपने फेलियर के लिए एक्सटर्नल फोर्सेस को ब्लेम नहीं करें, चाहे कितना कंपेलिंग रीजन हो आपके पास ये मानने के लिए कि मैं आज इस काम का हिस्सा नहीं हूं, इसलिए क्यों, इसलिए नहीं कि मेरे अंदर कोई कमी थी, बल्कि इसलिए कि कुछ और, किसी और को अवसर मिल गया किसी और कारण से बिना उसके टैलेंट के, भले ही ये रीजन हो, लेकिन आपको अपने अंदर हमेशा ये सोचना है, ये थॉट कभी आने ही नहीं देना है। द मोमेंट यू स्टार्ट ब्लेमिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स फॉर योर फेलियर्स, दैट्स द एंड ऑफ द रोड, दैट्स द एंड ऑफ द लर्निंग।
एब्सोल्युटली ट्रू।
आप बेटर हो जाओगे, आप अंदर झांकना बंद कर दोगे, आप सुधार करना बंद कर। तो कितना भी कंपेलिंग रीजन हो आपके पास किसी और को ब्लेम करने का आपकी फेलियर के लिए, आप मत ब्लेम करो, आप अपने को ब्लेम मत करो, आप ढूंढो अच्छा शायद ये कमी रह गई, चलो इसको सुधार, अच्छा ठीक है अगली बार इससे अच्छा कर सकते। तो हाउ स्ट्रॉन्गली एंड हाउ पॉजिटिवली यू एक्सेप्ट नोस एंड फेलियर्स एंड रिजेक्शन विल डिफाइन हाउ लॉन्ग यू गो इन दिस करियर।
तो सर एब्सोल्युटली राइट। और मतलब आपसे सर आज ये चर्चा करके मतलब नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉइसिंग मुझे लगता है कि एज इन अ वे ऑफ ऑप्टिमिज्म इन इन द वे ऑफ कि नेवर गिव अप इन लाइफ और बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। और जो भी इस एपिसोड को सुन रहे हैं आई गेस डेफिनेटली काफी कुछ उनको सीखने को मिलेगा। सो सर मतलब मैं तो ऐसे मैं ऐसा ऐसा राज ऐसा हुआ चर्चा में खो गया हूँ मैं। मतलब मुझे जैसे होता है ना कि इतना इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है आज बात करना। वेरी वेरी वन ऑफ द वेरी रेयर ऑफ कोर्स जैसे अभी तक हम जैसे काफी में जैसे अब ठीक है अपना एक जैसे पॉडकास्टिंग में जो जो लोगों का बैकग्राउंड होता है कोई परफॉर्मिंग आर्ट्स में जाना चाहते थे या कहीं माइंडसेट था कि ये काम करना है आपके केस में कहीं ऐसा सोचा नहीं था, ये अपने आप जैसे होता है ना, लाइफ ने एक रास्ता बनाया आपके लिए, और उसमें फैमिली का सपोर्ट, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट और जो भी अपॉर्चुनिटीज आती गई। सो सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन वॉइस ओवर पर चर्चा। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज आपने एग्जाम्पल जो लिया है हनुमान जी का और जामवंत का, इससे बेहतर बात क्या हो सकती है कि आज हम इस विषय पे बात कर रहे हैं 22 जनवरी 2024 को, इससे
जी
बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती सर। सो थैंक यू
बिल्कुल
सो
बिल्कुल
मच, एंड आई एम लुकिंग अहेड सर आपसे और इस तरह से डिस्कशन से कभी
बिल्कुल
मौका मिले। मैं आई वॉज फॉर्चुनेट कि मैं आपसे मिल पाया इंडिया वॉइस फेस्ट में, और
और
आपने,
मिलेंगे। थैंक
और बिल्कुल मिलेंगे सर।
यू, थैंक यू हर्ष, एंड यू डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत 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 अच्छा लगा। एक लास्ट टिप मैं देना चाहूंगा उस सभी लोगों को जिनको जिनकी आवाज थोड़ी सी भारी है, भूल जाओ इस बात को कि आवाज में बेस है,
यस
क्योंकि जो बेस है उस पे काम करने की जरूरत, मतलब उसको निकालने की जरूरत नहीं है अलग से, वो अपने आप ही, वो नेचुरल है, वो अपने आप आएगा। वरना क्या होता है, हम बेस में फंस जाते हैं। बहुत टेक्निकल सी एक प्रैक्टिकल टिप दे रहा हूँ उन लोगों को जो वॉइसिंग में आना चाहते हैं, जिनकी वॉइस हैवी है थोड़ी सी। गेट इट आउट ऑफ योर माइंड, अपने बेस से बाहर निकल के देखिए, वॉइसिंग बेस के बाहर है।
100% राइट, बिल्कुल सही है सर।
बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और आई होप इट हेल्प्स, माई जर्नी हेल्प्स अदर्स।
डेफिनेटली
मैं
सर,
कोशिश करता रहता हूँ, और सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है, और यही एक की लर्निंग होनी चाहिए जो सब लोग यहां से लेकर जाएं, कि द लर्निंग नेवर स्टॉप्स, कीप री इन्वेंटिंग योरसेल्फ।